آپ ہیں ایس بی ایس ہندی کے ساتھ اور خبروں کے لیے جائیں sbs.com.au/hindi پر۔ آج کے مکھیہ سماچار میں، پردھان منتری شری سکاٹ موریسن پر کورونا وائرس ٹپنیوں کو لے کر شری جارج کرسٹنسن پر لگام لگانے کا دباؤ، نیو ساؤتھ ویلز میں پبلک اسکول کے شکشک کم ویتن اور ادھک کاریہ بھار کے ورودھ میں کر رہے ہیں ہڑتال، اور کھیل میں بھارتیہ کرکٹ ٹیم نے نیوزی لینڈ کو ٹیسٹ سیریز ہرا کر آئی سی سی آئی ٹیسٹ ٹیم رینکنگ میں شیرش تھان کیا حاصل۔ اب سماچار وستار سے۔ امریکی سازش شو پر دوتاواس کے ورودھ کا آہوان کرنے والے سنسد کے سدسیہ شری جارج کرسٹنسن کے خلاف فیڈرل وپکش نے آسٹریلیائی دوتاواس کے کرمچاریوں کو چیتاونی دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی ٹپنیوں سے پریرت دور دراز چرمپنتھیوں دوارا لکشت ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ نیشنلز کے ایم پی شری جارج کرسٹنسن نے श्री एलेक्स जोन्स के इन्फो वॉच कार्यक्रम में भाग लेते हुए देश के कोविड 19 प्रतिबंधों पर ऑस्ट्रेलियाई वाणिज्य दूतावासों के बाहर विरोध प्रदर्शन की वकालत की थी। नेशनल पार्टी के कुछ वरिष्ठ सांसदों ने श्री क्रिस्टेंसन की टिप्पणियों की निंदा की है, लेकिन लेबर सेनेटर और कोविड 19 समिति की अध्यक्ष केटी गैलगर प्रधानमंत्री श्री स्कॉट मॉरिसन की प्रतिक्रिया से असंतुष्ट हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री श्री स्कॉट मॉरिसन की श्री क्रिस्टेंसन की खतरनाक टिप्पणियों की निंदा करने में विफलता नेतृत्व की कमी को दर्शाती है।
Whilst, you know, we've all been in this pandemic trying to do the right thing, getting vaccinated, following the health advice, we have a member of the Prime Minister's own government who's out there likening quarantine facilities to Auschwitz. And also encouraging protest action or inciting violence at Australian embassies overseas, where we have hard-working public servants working in the national interest.
अभद्र भाषा की नीतियों का उल्लंघन करने के लिए फेसबुक और यूट्यूब द्वारा इन्फोवॉर्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। श्री जोन्स ने महामारी के बारे में कई झूठे और भ्रामक दावे भी किए हैं। उधर नॉर्दर्न टेरिटरी के अधिकारियों का कहना है कि कैथरीन और बिंजारी और रॉक होल के आदिवासी समुदायों में तालाबंदी प्रतिबंध कल 12 दिसंबर से समाप्त किए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री माइकल गनर का कहना है कि एक सप्ताह बाद उन क्षेत्रों में मास्क जनादेश हटा दिए जाएंगे। नवीनतम रिपोर्टिंग अवधि में नॉर्दर्न टेरिटरी में कोई नए स्थानीय कोविड 19 मामले का पता नहीं चला है, लेकिन श्री गनर का कहना है कि सरकार रात भर आने वाले करीबी संपर्कों के परीक्षण परिणामों के आधार पर तालाबंदी को उठाने से पहले मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी की सलाह का इंतजार करेगी।
We are expecting more cases, but if they're not community spread cases, it will still be our intention to proceed with lifting the lockout. We are going to keep seeing cases pop up. A case here and there does not necessarily mean a community goes into lockdown or lockout. Depends on where it is, what the links are, what the vulnerabilities are. This is part of our new normal in the territory, where we now have exceeded 90% fully vaccinated.
विक्टोरिया के लोकपाल द्वारा की गई एक जांच में खुलासा हुआ है कि हजारों निवासियों को घर लौटने के लिए कोविड 19 सीमा छूट से अन्यायपूर्ण और अमानवीय रूप से वंचित किया गया था। इस साल की शुरुआत में सिडनी और न्यू साउथ वेल्स के अन्य हिस्सों की सीमा को बंद करने के फैसले के बाद विक्टोरिया के कई लोगों ने अपने प्रियजनों को देखने, चिकित्सा नियुक्तियों को भाग लेने, बीमार परिवार की देखभाल या नौकरी शुरू करने के लिए छूट की मांग की थी। विक्टोरिया के स्वास्थ्य विभाग को जुलाई और सितंबर के बीच जमा किए 33,252 आवेदनों में से सिर्फ 8% को ही मंजूरी दी गई थी। लोकपाल डेबरा ग्लास का कहना है कि वह स्वास्थ्य सलाह का पालन करने के महत्व को समझती हैं, लेकिन इन मामलों में अधिक विवेक और करुणा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था।
One complainant was asked for evidence of her sister's cancer diagnosis, treatment and life expectancy, her birth, marriage, divorce certificates and driver's license, and a statutory declaration from her elderly mother. People were not given reasons for the refusals or an avenue of appeal. It appeared to me that the department was putting significant resources into keeping people out, rather than finding safe ways of getting them home.
इस बीच ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी ने कोविड 19 के ओमिक्रॉन प्रकार के 3 नए मामले दर्ज किए हैं। इनमें से 2 मामले एक संक्रमित मामले के करीबी घरेलू संपर्क है और तीसरा आकस्मिक संपर्क है। राष्ट्र की राजधानी में सक्रिय ओमिक्रॉन संक्रमणों की कुल संख्या अब 5 हो गई है। न्यू साउथ वेल्स ने कोविड 19 के 260 नए स्थानीय रूप से अधिग्रहित मामले और 2 मौतें दर्ज की हैं। विक्टोरिया में 1,185 नए स्थानीय कोरोना वायरस संक्रमण और 7 लोगों की मृत्यु दर्ज की है। विक्टोरिया में 12 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 91% लोगों को टीके की दोनों खुराक लग चुकी है। उधर न्यू साउथ वेल्स का शिक्षा विभाग राज्य में चल रही 24 घंटे की शिक्षक हड़ताल को गैर कानूनी करार दे रहा है। पब्लिक स्कूल के शिक्षक कम वेतन और निरंतर काम के बोझ के विरोध में राज्य की संसद के बाहर मार्च करने से पहले सिडनी के हाइड पार्क में एकत्र हुए। उनका मानना है कि औद्योगिक कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि कर्मचारियों की बढ़ती कमी की वजह से शिक्षकों को विशेषज्ञता के अपने क्षेत्र से बाहर पढ़ाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। शिक्षा विभाग की सचिव जॉर्जिना हैरिसन का कहना है कि स्ट्राइक की वजह से छात्रों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है।
One of the important things for our parents to know is that despite what they might be hearing from those on the other side of this debate, we do not have a teaching supply crisis in New South Wales. What we have is a $125 million plan to meet our future demands for teachers here in New South Wales. And we are implementing that plan to make sure that we have a teacher for your child today and for tomorrow.
रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया आरबीआई ने वर्ष की अपनी अंतिम बोर्ड बैठक में नकद दर को रिकॉर्ड 0.1% के निम्न स्तर पर बनाए रखा है। आरबीए के गवर्नर फिलिप लो का कहना है कि ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था कोविड 19 के डेल्टा संस्करण के कारण हुए विलंब से उभर रही है और उन्हें उम्मीद है कि 2022 की पहली छमाही में आर्थिक विकास अपने पूर्व डेल्टा पथ पर वापस आ जाएगा। उनका कहना है कि बोर्ड तब तक नकद दर में वृद्धि नहीं करेगा जब तक कि वास्तविक मुद्रास्फीति को 2-3% लक्ष्य सीमा के भीतर स्थायी ना हो जाए। अब भारत से कुछ खबरें। सोमवार को नई दिल्ली में 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और रूस के बीच कुल 28 समझौतों MOUs पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने आतंकवाद से खतरा एवं अफगानिस्तान में उभरती स्थिति जैसी बड़ी चुनौतियों से निपटने में सहयोग व समन्वय बढ़ाने का संकल्प लिया है। दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, बौद्धिक संपदा और शिक्षा समेत कई क्षेत्रों में समझौते हुए हैं। इसके अलावा नई दिल्ली और मॉस्को में 2021 से 2031 तक अगले 10 वर्षों के लिए रक्षा के क्षेत्र में सहयोग के एक कार्यक्रम पर भी हस्ताक्षर किए हैं। भारत में महाराष्ट्र में 2 और ओमिक्रॉन मामले सामने आए हैं, जिससे कुल मामलों की संख्या अब 23 हो गई है। अब तक कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली और राजस्थान में ओमिक्रॉन प्रकार के मामले सामने आए हैं। उधर स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सोमवार को 8,306 कोविड मामलों की दैनिक स्पाइक दर्ज की गई, जिससे कुल सक्रिय मामले 98,416 तक पहुंच गए हैं। मुद्रा दर की जानकारी में इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक अमेरिका में 1 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत आज भी 71 सेंट्स है और भारत में 1 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 53.14 रुपये है। खेल समाचार में तस्मानिया के प्रीमियर पीटर गटविन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से अपने राज्य को पांचवे और अंतिम एशेस टेस्ट के लिए मेजबान के रूप में नामित करने का आह्वान कर रहे हैं। ये मैच मूल रूप से 14 और 18 जनवरी के बीच पर्थ स्टेडियम में आयोजित होने वाला था, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के सख्त कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण इसे नई जगह करने का फैसला किया है। मैच अब प्रस्ताव या टेंडर के लिए खुला है और इसके स्थान पर निर्णय में कई सप्ताह लगने की संभावना है। श्री गुटवन का कहना है कि तस्मानियाई सरकार अगले 24 घंटों में होबार्ट के बेलरीव ओवल में टेस्ट आयोजित करने के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सामने एक प्रस्ताव रखेगी।
This is your opportunity to make history. This is your opportunity to provide Tasmania with an opportunity for an Ashes test which has never been presented to this state before. Now, and I hope that you'll work with us to make history, not fall for whatever's been put up by the larger states. They've had Ashes tests played ad nauseum in those states. Don't double up. Don't give Melbourne or Sydney a second test.
उधर भारत और न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज को भारत ने 1-0 से जीत लिया है। मुंबई में हुए मुकाबले के चौथे दिन टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 372 रन से हराया। इस टेस्ट को जीतकर भारत ने ICCI रैंकिंग में भी नंबर एक स्थान हासिल किया है। न्यूजीलैंड की टीम 540 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी दूसरी पारी में 167 रन पर आउट हो गई। आपको बता दें, भारत ने अपनी पहली पारी में 325 रन बनाए थे, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 62 रन ही बना पाई थी। भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 276 रन पर समाप्त कर दी थी। दोनों टीम के बीच कानपुर में खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया था। घरेलू सरजमी यानी कि होम ग्राउंड पर रनों के मामले में ये भारत की सबसे बड़ी जीत है। साथ ही जारी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 से 2023 के पॉइंट्स टेबल में भी टीम इंडिया के सबसे ज्यादा अंक हो गए हैं। और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। पर्थ आंशिक बादल रहेंगे, यहां का न्यूनतम तापमान 24 और अधिकतम 38 डिग्री जाएगा। एडलेड में भी आंशिक बादल छाए रहने के आसार, वहां का न्यूनतम तापमान 11 और अधिकतम तापमान 20 रहेगा। मेलबर्न में बरसात की आशंका, न्यूनतम 12 और अधिकतम 18 डिग्री। कैनबरा में भी बारिश की संभावना और न्यूनतम तापमान 12 और अधिकतम तापमान 18 डिग्री। सिडनी 1 या 2 बौछार पड़ने की आशंका, न्यूनतम 17 और अधिकतम 22 डिग्री। ब्रिस्बेन में भी बारिश की संभावना, न्यूनतम 21 और अधिकतम 31 डिग्री। डार्विन बौछार के साथ तूफान की संभावना, न्यूनतम 26 और अधिकतम 34 डिग्री। ऑस्ट्रेलिया के सभी राज्यों में या तो बादल या बारिश के आसार हैं, लेकिन भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल धूप खिली रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक जाएगा। आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।
ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं? एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या फिर जहां आप पॉडकास्ट सुनते हैं वहां हम हैं।